हाँ करीब बैठो ताकि मुर्गी की टांग पहले मिले। अरे दीनी दस्तरखान की ये दीनी दस्तरखान है, क्योंकि जो सामईन होते हैं ना, जैसा मेहमान होता है अल्लाह ताला मेजबान को वैसी गिजा अता फरमाता है। अगर जैसे सामईन की तलब होती है तो मुकर्रर को वैसा मजमून अता होता है, तब हो जौक हो तो मजमून आला होता है, तलब जौक ना हो तो जैसा मामला वैसा होता है ऊपर से मामला, क्योंकि जैसा मेहमान होता है ना फिर डिश भी वैसी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। इसलिए दीन का एक जौक है कि दीन की बात सुनने का भी एक अदब है, सलीका है, और उन आदाब में से ये भी शामिल है टेक लगाकर नहीं बैठना चाहिए। अजीब है आजकल के बुढ़े हैं वो सामने बैठे होते हैं बगैर टेक लगाए और जवानों को टेक लगाते हैं, और फिर जिनकी शादी भी नहीं वो भी टेक लगाए, तो फिर कहां से शादी होगी उनकी? अभी से जवानी अभी तो आगाज ही नहीं हुआ, अभी से ही हाल है। जगह दो भाई इनको, जगह दो, आगे हो जाओ। और दीन की बात सुनने का एक अदब और भी है, वो ये कि जब बयान हो तस्बीह ना पड़े, क्योंकि ये खुद जिक्र है। अगर दो इबादतें जमा नहीं करनी चाहिए, यहां तक कि मुसलमान से मुलाकात के वक्त भी तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए। मुलाकात ये खुद इबादत है, एक मोमिन से मिलना ये आदाब है, और दीन सरापा अदब का नाम है। इसलिए एक अदब और भी सिखाया कि जिस जाए नमाज पर काबा शरीफ बना हो उसको इस्तेमाल करने से हमारे बुजुर्गों ने मना फरमाया, क्योंकि बेअदबी होती है उसकी। तथा अगर एक तस्वीर काबे शरीफ की हो उस पर कोई पांव रख दे तो हड़तालें शुरू हो जाएंगी जनाब, तो टैक्सी ड्राइवरों के सर फाड़ देंगे, पेट्रोल पंपों को आग लगा देंगे। अगर काबे शरीफ या रोजा मुबारक पर कोई पांव रख दे, बताइए उस तस्वीर पर, तो जिस जाए नमाज में काबे शरीफ या रोजा मुबारक हो वो तो इस काबिल है कि उसको फ्रेम करके दीवार पर सजाया जाए, क्योंकि इंसान उस पर पांव भी रखता है फिर घूमकर बैठता है तो अपना तीतर भी रखता है उस पर, इसलिए उसका भी अदब सिखाया। सुभान अल्लाह। और मेरे मुर्शिद ने यह भी फरमाया कि जब तस्बीह पढ़ो तो तस्बीह को न आगे रखो न ऐसे पीछे रखो, अरे तस्बीह पढ़ते ना ऐसे हाथ पीछे करके, फरमाया ये तस्बीह जो है वो मुज़क्किर मौला है, यानी अल्लाह की याद दिलाने वाली है, वो तस्बीह अल्लाह ताला की याद दिलाने वाली है। अब उसको कहां रख रहे हो पीछे? तो फरमाया उसका मकाम तो होना चाहिए ऐसे रखो, या ऐसे रखो कम से कम, ये आदाब में से। एक अदब और भी बयान करना तो हमें आता नहीं, ऐसी जो जो बातें बुजुर्गों की याद आ रही अपने शेख की सुनी हुई छोटी छोटी बातें हमको बता रहे भाई। बयान करने वाले तो आपके माशाल्लाह आते भी हैं। एक बुजुर्ग थे तो उनसे उनके मुरीदीन और शागिर्दों ने कहा हजरत आप हमारे बयान करने के लिए चले। तो मैं अच्छा कब चलने है? कहा फलां दिन। अब वो आए तो मिंबर पर बिछाया उनको, पूछा हाँ भाई आप लोगों को मालूम है मैं क्या बयान करना चाहता हूँ? तो बोले जी हजरत हमें मालूम है। और मैं अजीब है, जब आपको मालूम था मुझे क्या बुलाने की जरूरत थी? ये कह के चल पड़। अब उसके बाद लोगों ने कहा यार ये तो बड़ी हमाकत हुई हमसे, हमने क्या भी? फिर दरखास्त पेश की हजरत आप हमारे बयान के लिए तशरीफ लाए। वो दोबारा वो बुजुर्ग आए, पूछा भाई वही सवाल फरमाया हाँ भाई आप लोगों को मालूम है कि मैं क्या बयान करना चाहता हूँ? नहीं हजरत हमें नहीं मालूम। मैं ऐसे लोग जाहिल जिनको कुछ पता नहीं उनमें बयान करने का क्या फायदा, ये कह के चल पड़े। उन्होंने कहा ये हजरत तो बड़े होशियार है। तीसरी मरतबा आप लोगों ने कहा कि देखो अब बुलाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ हमें मालूम है, कुछ लोग कहेंगे हमें नहीं मालूम। मौलाना इदरीस साहब खैरियत तो है? तो अब उसके बाद तीसरी दफा फिर उनको बुलवाया। अब कुछ पूछा पैसते ही सवाल, आप लोगों को मालूम है मैं क्या बयान करना चाहता? आवाज आई जी जी, कहीं नहीं नहीं हाँ हाँ जी जी नहीं नहीं। ख्वाजा साहब का एक शेर याद आया, सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब ख्वाजा अजीज हसन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह डिप्टी कलेक्टर थे, हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत के जीव बरकत के अलीगढ़ के पढ़े हुए अंग्रेजी, लेकिन आलम यह था आह कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखी, मूछे साफ, सर पर पगड़ी, हाथ में तस्बीह, शलवार टखनों से ऊपर, शायर भी थे, एक मुशायरे के अंदर तशरीफ ले गए। जब इनका नंबर आया तो शोर मचा कि ये मस्जिद का मुअज्जिन, मुअज्जिन साहब मुल्ला साहब यहां कहां से आ गए, मुशायरे में इनका क्या, हूटिंग शुरू। अल्लाह ताला अपने औलिया को जो एक खास चीज अता फरमाते हैं उसकी खसूसियत यह है कि मखलूक की परवाह नहीं होती। मखलूक की दर्द तो होता है और वो दर्द ये होता है कि इस बंदे को मैं अल्लाह से मिला दूं, लिहाजा वो किसी को हकीर तो नहीं समझता, लेकिन उसके कल्ब में अल्लाह ताला की मोहब्बत का दर्द ऐसा होता है कि बादशाहों के तख्तो ताज से बिकता नहीं है। बड़े पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को संजर के बादशाह ने खत लिखा कि हजरत आपकी खानका में लंगर भी होता है तो मैं अपने मुल्क नीम रोज आपके खानका के लिए वक्फ करना चाहता ताकि इसकी आमदनी से आपके खानका का लंगर चले। अब आप तसव्वुर करें, हमला हर तो आलम यह है कि अगर कहीं 5 रुपए पड़े नजर आ जाए उसको भी नहीं छोड़ते। चंदा लेने के लिए जाते हैं, सेठ साहब मौलवियों की बुराइयां कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी चंदा लेकर आते हैं। टीवी चल रहा है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ रहे लेकिन चंदा नहीं छोड़ेंगे, सारी जिंदगी उनको नहीं बताएंगे कि नमाज भी पढ़ो। और सेठ साहब को भी होता है कि चलो एक तालिब इल्म हमारा भी तैयार हो जाएगा, हम उसकी पीठ पर बैठकर जन्नत में चले जाएंगे, जो चाहे हम करते फिर एक तालिब इल्म मोटा मिल जाएगा उसकी पीठ पर बैठकर जन्नत में चले जाएंगे, बाकी हलाल हराम कुछ पता नहीं। तो शेख बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब लिखा, आह इससे पता चलता है अल्लाह की नस्बत और ताल्लुक में अल्लाह की दौलत क्या चीज होती है। फरमाए के चू चितरे संजरी रुखे बख्तम सिया हुआ, मिस्ल बादशाह की छतरी जो काली है, मेरे बख्त मेरे नसीब भी मेरा मुंह काला हो जाए। गर्दर दिलम बुअत हवस है मुल्के संजरम, अगर मैं अपने दिल के अंदर इस तेरे मुल्क संजर की लालच रखूं। फिर फरमाया कि जांगे के याफ्तम खबर उस मुल्क के नीम शब, जब से हमको अल्लाह ताला की याद में अल्लाह ताला की रात में आधी रात को रोने की सल्तनत मिली है, अल्लाह के हुजूर में जो बादशाह को बादशाह की भीख देता है उसके हुजूर में सजदा करने की लज्जत और नेमत मिली है। मन मुल्क नीम रोज बैग जो नमी खरम, हम इस तेरे मुल्क नीम रोज को मैं एक जौ के दाने के बदले में खरीदने को तैयार नहीं हूं। ताल्लुक माल्ला और दर्द दिल की दौलत होती है कि बादशाहों को दीन तो सिखाएगा लेकिन बादशाहों से मुस्तगनी होगा, उनके मालो दौलत से मुस्तगनी होगा। हकीम उलम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह नवाब ढाका के यहां, नवाब ढाका ने हजरत से दरखास्त की कि हजरत आप हमारे यहां तशरीफ लाए ढाके में। हजरत ने 3 शर्तें लिखवाई, एक शर्त तो ये कि हदिया नहीं लूंगा, तोहफा, आपको तोहफा हदिया देने की इजाजत नहीं होगी, हदिया नहीं लूंगा। और दूसरी शर्त ये है कि ऐसी जगह ठहराएंगे जहां गरीब लोग भी आ सके। और नंबर 3 ये कि 24 घंटे में एक वक्त आप मुझको ऐसा देंगे कि आप और मैं उस वक्त आप कुछ दीन सीखने सिखाने की बातें होंगी कुछ। नवाब ने ये शर्तें लिख कर दी, हजरत तशरीफ ले गए। उसके बाद पाप के बेटे की बिस्मिल्लाह थी कुरान पाक, तो उसने अब अरे भाई पंखा चलाओ यार, उसने नवाब हजरत भी तशरीफ फरमाते तो उसने एक तश्त दिया, ट्रे अशरफियों से भरा हुआ, वो हजरत को पेश किया। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ले लिया, उसके बाद जब तन्हाई में जो नवाब से मुलाकात का वक्त था, उस वक्त में हकीमुल उम्मत ने वो ट्रे वापस की और फरमाया कि नवाब साहब, उस वक्त मैंने आपकी इज्जत की खातिर से ले लिया, लेकिन आपका मेरा वादा था कि आप हदिया मुझको नहीं देंगे, ये वापस लीजिए। बस वो नवाब रोने लगा कि हजरत कि आप हमें दीन देकर जा रहे हैं और हमारी दुनिया को ठुकरा कर जा रहे हैं। अरे भाई ये पंखा चलाओ यार, ऐसा क्या जालिम बनते हो यार, समझाने पर भी समझ में नहीं आती बात। मैं हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह से अर्ज किया नवाब ने कि हजरत आप हमारी दुनिया को ठुकरा रहे और हमें दीन देकर जा रहे हैं। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, बात चली थी हां ना पर, तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह जब आए स्टेज पर, शोर हुटिंग शुरू कि ये मुल्ला कहां आ गया। हजरत ने शेर पढ़ना जो शुरू किया तो मेरे मुर्शिद हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दाउद बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, एक मिसरा पड़ा, आधा मजमा खामोश हो गया। जब शेर मुकम्मल हुआ तो मजमे पर ऐसी खामोशी तारी हो गई कि जिसको सुई भी गिरे तो क्या आवाज आ जाए। अंग्रेजी में कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसी खामोशी तारी। वो शेर क्या, अदनान शरीफ का शेर था कि घटा घटा उठी है तू भी खोल जुल्फे अंबरी साकी। घटा उठी ना, कैसा रोमांटिक मौसम आता है कि जी बादल छा गए, चलो अब किसी माशूक को तलाश करो, किसी लैला को बगल में दबाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाओ, औरतों के लिए घुड़ सवारी की इजाजत नहीं है। तो उसकी एक वजह है कि घोड़े पर मर्द एक टांग इधर एक टांग उधर करके बैठता है, औरत ऐसे बैठ नहीं सकती क्योंकि उससे उसकी जो शर्मगाह वो में वरम आ जाता है, उससे औरतों को मना है घुड़ सवारी में ऐसे बैठना, पालकी है। लेकिन अजीब तमाशा देखा है कि बाज इलाकों में औरतें मर्दों की तरह मोटरसाइकिलों पे बैठती है, हया और शर्म के भी खिलाफ है इस तरीके से बैठना जो मर्दों की हैयत है। दादा औरतों के लिए जो तरीका कि एक तरफ पांव निकालकर बैठे, ये तरीका हया और शर्म के करीब है। फिर साली को भी मोटरसाइकिल पर बिठा रहे और बार बार ब्रेके भी लगा रहे, वो भी पूछती है भाईजान वला ते कु तबीयत ठीक दे, तू की पे करिंदा पे है। वो कहता है कि करदा करना कुछ नहीं है, जरा खड्डे बहु ने सरायकी की सब लुगत माँ पे। हाँ भाई ग्रामर ना निकालना सरायकी की। जो बात समझाना चाहता हूं शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अल्फाज को ना देखना, कहने वाले को भी ना देखना, बात को सुने गौर से, सुने ये बात मेरी गोशे दिल से जो मैं कहता हूं। हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुने ये बात मेरी गोशे दिल से, दिल के कानों से, सुने ये बात मेरी गोशे दिल से जो मैं कहता हूं। मैं उन पे मर मिटा तब गुलशन दिल में बहार आई है। सुने ये बात मेरी गोशे दिल से जो मैं कहता हूं, मैं उन पे मर मिटा तब गुलशन दिल में बहार आई है। लिहाजा औरतों का वो तरीका ये हया और शर्म के खिलाफ है कि वो मर्दों की हैयत में बैठे। उनके लिए हया और शर्म के लिए तरीका यही है कि वो टांगों को एक तरफ करके बैठे। इसे तो पर्दा है, उसको तो देखने की इजाजत नहीं है, और उसे हाथ मिलाना और झप्पियां पाना फिर मोटरसाइकिल पर बिठाकर पहुंचाने जाना। एक आदमी तो चलो करे, तो अजीब तो वो भी है, गुनाह तो गुनाह है, लेकिन दाढ़ी वाला हाफिज आलिम कारी कहलाने वाले दीनदार जो हैं, बुजुर्गों की मोहब्बत का दम भरने वाले, तबलीग में चिल्ले लगाने वाले, अगर वो इस काम में मुब्तला हो मेरे दोस्तों, और ज्यादा ताज्जुब की बात है। एक आम आदमी गुनाह करे तो वो है ही, वो तो गुनाह तो गुनाह है, लेकिन बाजों के लिए वो खास बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी दाढ़ियां नहीं है वो ये काम शुरू कर जारी रखें। पहला काम तो दाढ़ी भी रखे, क्योंकि दाढ़ी का मुंडाना और काटना ये तो हराम और गुनाह कबीरा है। तो बात चल रही थी कि घटा उठी है ना शरीफ का शेर है, घटा उठी है तू भी खोल जुल्फे अंबरी साकी, घटा उठी है तू भी खोल जुल्फे अंबरी साकी, तेरे होते फलक से क्यों हो शर्मिंदा जमीन साकी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जमीन का वो टुकड़ा कि जिस टुकड़े पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर रखा हुआ है, वो काबे शरीफ से अफजल है, अर्श आजम से अफजल है वो। अदा जमीन कैसे शर्मिंदा, तेरे होते आह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे होते फलक से क्यों हो शर्मिंदा जमीन साकी। इसी का दूसरा शेर जिस पर मुझे ये बात याद आई वो ये है कि जबरदस्ती लगा दी बोतल आज मुंह से साकी ने, कि हम जो है अल्लाह वाले नहीं बनना चाहते, लेकिन उस शेख पर कुर्बान, उसके दर्द दिल पर कुर्बान कि अल्लाह ताला की मोहब्बत की शराब जबरदस्ती पिला दी, जबरदस्ती लगा दी बोतल आज मुंह से साकी ने, मैं कहता ही रहा हाँ हाँ नहीं साकी नहीं साकी। मैं ऐसा अल्लाह ताला ने अपने औलिया की, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो खालिक मकनातीस है, अपने औलिया के कुलूब में जो अपनी तजल्लियात और कुर्ब इलाही की दौलत और मोती अता फरमाता है, तो उनके कुलूब में भी मकनातीस की सलाहियत होती है। लिहाजा वो जो दर्द भरा दिल होता है, वो खालिक मकनातीस को जो अपने दिल में रखता है, लिहाजा वो क्या है, वो कहता है कि नहीं मैं मुल्ला की नहीं सुनूंगा, मैं अल्लाह वाला नहीं बनूंगा, लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जो चिपक जाता है बस वो अल्लाह वाला बन के रहता है, वो चाहे भी कि मैं ना बनूं, चाहे भी कि मैं ना बनूं, आ मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि वो बन के रहता है। अल्लाह ताला ने अपने औलिया की सोहबतों में असर रखा है। वो जो शेख ने कहा कि अच्छा भाई कहीं से आवाज आ रही है हाँ, कहीं से आवाज आ रही है ना, अच्छा चलो भाई इसका हल अब क्या है, ओहो अब इसका हल ये करना पड़ेगा, जिन लोगों को मालूम है वो उनको बता दे जिन्हें नहीं मालूम, और जिन्हें नहीं मालूम वो उनसे पूछ ले जिनको मालूम है, ये कहकर चल पड़े। मेरे दोस्तों मैंने ये बात अर्ज की थी कि जाए नमाज जिस पर काबा शरीफ बना हुआ हो, रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बुजुर्गों ने अदब किया, कहा कि इसका अदब करो कि उस पर पांव भी रखता है फिर उस पर बैठता भी है, इसलिए उससे एहतियात करें। और एक मसला और भी है कि रुकू से सजदे में जाते हुए तकबीर कब शुरू करनी चाहिए और कब खत्म करनी चाहिए। बेहती जेवर फिका की तमाम किताबों में यह बात लिखी हुई है कि तकबीर हरकत के साथ शुरू करें, क्योंकि असल में जो ये तकबीर है, पहली तकबीर तो फर्ज है, तकबीर तहरीमा उसको कहते हैं, उसके बाद नमाज में जितनी तकबीर आते हैं वो सबकी सब सुन्नत है, सिर्फ पहली तकबीर फर्ज है, इसलिए उसको तकबीर तहरीमा भी बोलते हैं। लिहाजा ये जो तकबीर बाकी हैं ये तकबीर इंतकाल भी कहलाती हैं फिकही जबान में, इनको तकबीर इंतकाल भी बोलते हैं, यानी उस तकबीर के जरिए से इमाम ये खबर देता है कि देखो मैं अपनी इस हालत से मुंतकिल होकर दूसरी हालत में जा रहा हूं, لہذا رکوع سے سجدے میں رکوع کی کھڑا ہے قومے کے اندر تو اس کے بعد وہ یہ خبر دیتا ہے کہ میں سجدے میں جا رہا ہوں، لہذا اس کا وقت یہ ہے کہ جیسے ہی حرکت شروع کرے ساتھ میں تکبیر بھی شروع کرے اور سجدے سے پہلے پہلے تکبیر کو ختم کر لے، کیونکہ سجدے کا موقع، سجدے کی سنتوں میں کہیں تکبیر نہیں ہے، جاتے وقت تو تکبیر ہے لیکن سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہوتا ہے، لہذا اب وہ بے موقع ہے، فضول ہے، بے محل ہے، اور ہر چیز جب اپنے موقع پر ہوتی ہے تب وہ اچھی لگتی ہے، لہذا اس تکبیر کے انتقال کا مقصد ہے اس منتقل ہونے کی خبر اور اطلاع دینا کہ جی میں منتقل ہو گیا قومے سے سجدے میں جا رہا ہوں، اب تمام نمازی میرے پیچھے پیچھے آ جائے، تو لہذا وہ جو تکبیر ہے سجدے میں جانے سے پہلے پہلے ختم ہو جانی چاہیے، سجدے تک نہیں چلنی چاہیے وہ، کیونکہ سجدے میں موقع کیا ہے، وہ تکبیر نہیں، اب وہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا. اور اسی طریقے سے جب کھڑا ہو تو اپنے دونوں پاؤں بالکل سیدھے رکھے. میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت نے فرمایا کہ چار بلاک خریدے. آپ کے یہاں بلاک آج کل کتنے کا ہے؟ یہ جو لال اینٹ ہوتی ہے کیا قیمت ہے اندازہ؟ سات روپے. سات روپے کے سات سات روپے کے چار بلاک لیے. ایک بلاک کو بیت الخلاء میں لگا دیا، سات روپے قیمت رہے گی؟ وہ بھی ختم ہو گئی، دن رات اس پر پیشاب کر رہے ہیں. دوسرا بلاک اپنے گھر میں لگا دیا، اب کیا قیمت ہوئی؟ زمین کی قیمت پلس اور مثبت اس بلاک کی قیمت ہو گئی نا، لہذا اس کی قیمت سات روپے رہے گی. میرے مرشد فرماتے کہ تیسرا بلاک حکومت سعودیہ کی اجازت ملی، روزہ مبارک پر لگا دیا مسجد نبوی میں، اب قیمت بڑھ گئی. تیسرا بلاک حکومت سعودیہ کی اجازت سے ملتزم پر لگ گیا، اللہ اکبر، اب اور قیمت بڑھ گئی. فرمایا کیوں؟ کیونکہ جب ہر چیز جب اپنے مرکز کے قریب ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے ہماری جو مٹی ہے، اگر یہ مٹی ان لڑکوں کے چکر میں، ان عورتوں کے چکر میں ہم نے اپنی زندگی کو لگایا تو ہماری زندگی کی قیمت یہ بھی نہ رہے گی. اب ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، وہ ان عورتوں کے چکر میں گھوم رہا ہے کہ بازار میں چکر لگاؤ، اس عورت کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، یا کسی لڑکے کو پٹانے کے چکر میں ہے، اس کو نئے نئے موبائل دلا رہا ہے، اس کے موبائل میں بیلنس ڈال رہا ہے، اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر مٹن کڑھائیاں کھلانے لے جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے دودھ پتی چائے پلا رہا ہے الائچی ڈال کر، عید آئی تو عید پر جوڑا بھی دلایا، سیلاب زدگان کے لیے امداد آئی تو وہ متاثرین کو دینے کے بجائے اسی لونڈے کو دے رہا، وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت جو کچھ ہوتا ہے سب سمجھتے. اور فلموں میں اور تصویروں میں کہ جی انٹرنیٹ لیا یا موبائل لیا، اب موبائل والے کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس میں یار فلم تو ڈال دینا، ذرا کچھ تصویریں بھی ڈال دینا، کیا قیمت رہی میرے دوست؟ اگر ہماری زندگی ان لڑکوں کے عشق میں یا عورتوں کے عشق میں ہم نے اپنی مٹی کو ان گٹر لائنوں پر فدا کیا تو کیا زندگی ہماری، کیا قیمت ہوگی ہماری، کیا منہ لے کر جائیں گے قیامت کے دن ہم لوگ؟ حقیقت تو کھل کے رہے گی کہ مان لو چھپ چھپ کے یہ کام کر رہے ہیں کہ جی جماعت سے نمازیں بھی ہو رہی ہیں، بزرگوں کی محبت بھی ہے، حج و عمرہ بھی ہے، تبلیغ میں چلے بھی ہیں، لیکن جناب گھر میں کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، اس میں سارے دھندے بھی ہیں، کیا قیمت ہوگی؟ مخلوق کو نہیں پتا چلے گا، زیادہ تر یہی ہوگا، لیکن کب تک؟ ایسے لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، लड़कों के साथ बुरी हरकत करते हुए पकड़े गए हैं, औरतों को छेड़ते हुए पकड़े गए हैं, इतने जूते, ऐसी जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बनती है कि जिसका तसव्वुर नहीं है, इज्जत मिलती है तो जिंदगी क्या हुई? इन गटर लाइनों पर फिदा होंगे। आ वो जिंदगी जो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत और ताल्लुक के लिए दी थी वो बर्बाद हो गई और मिलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही लड़का अब उसकी मूछें निकल आई, अब उसकी दाढ़ी निकल आई, अब जिसको चिकन कढ़ाइयां खिला रहे थे अब उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, सीने पर बाल, गर्दन पर बाल, कमर पर बाल, अब क्या बन गया? बाल बरदार जहाज। खिलाएगा कोई उसको आइसक्रीम लॉली? अब उसको कोई टॉफियां देगा, लॉलीपॉप चुसाएगा? अब उसके मोबाइल में बैलेंस, मुहर्रम का मुस्का शरबत भी नहीं पिलाएंगे उसको कोई, जिसको देख देख कर आंखें फड़कने लगती हैं और मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसको दावत दे रहे हैं कि हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। लेकिन मेरे दोस्तों, आ क्या जिंदगी है! क्या अल्लाह ताला ने ये जिंदगी इसलिए अता की है? जो सुअर का काम है, सुअर का काम है, वही काम इंसान फिर मुसलमान होकर अगर इन्हीं गटर लाइनों में घुसे तो फिर हमने और सुअर में क्या फर्क रहा? इंसानियत का क्या फर्क रहा? फिर मुसलमान के शरफ, और फिर जिसको अल्लाह ताला, हाँ जिसको अल्लाह ताला नेक लोगों की सोहबत अता फरमाए, नेक माहौल अता फरमाए, मस्जिद का, मदरसे का, खानकाहों का, तबलीग का, हज उमरे का, फिर अगर वो इन्हीं गटर लाइनों में घुसे तो क्या मेरे दोस्तों, क्या जिंदगी है ये जालिम की! अब उसकी जिंदगी की कीमत भी खत्म हो गई, कोई कीमत नहीं। और मान लो एक है शख्स, वो माल जमा करता है, मुरब्बे जमीने, कोठी, बैंक बैलेंस, घड़ियां, मोबाइल, शानदार लिबास, खाना पीना है, लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जब तुम मरोगे तो क्या लेकर जाओगे? अपनी मुरब्बे जमीने, अपनी प्राडो गाड़ियां, अपने मोबाइल, जदीद मोबाइल, एयर कंडीशन, ये कारपेट, ये डीप फ्रीजर, क्या लेकर जाओगे अपने साथ? यहां खा लिया खा लिया, जो पहन लिया पहन लिया, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। फरमाया कि ये भी जिंदगी है। मान लो चार चार शादी कर लेगा, क्या लेकर जाएगा अपने साथ? ये काम आने वाली चीजें नहीं है ये दुनिया। अजीब, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जिस दुनिया से हमेशा के लिए जाना, फिर कभी लौटकर वापस ना आना, जिस दुनिया से हमेशा के लिए जाना, फिर कभी लौटकर वापस ना आना, ऐसी दुनिया से दिल का क्या लगाना? तो दुनिया के दिल के लगाने के माने यह है मेरे दोस्तों कि उसमें मुनहमिक होकर अपने मालिक और पालने वाले को भूल जाना। ये माल तो नेमत है, लेकिन कब नेमत है? जब ये माल मौला पर फिदा हो। ये जवानी तो नेमत है, लेकिन कब नेमत है? जब ये जवानी मौला पर फिदा हो। हदीस शरीफ में आता है कि शाबुन नशा फी इबादती रब्बी, कि वो जवान जो अल्लाह की इबादत से नशा हासिल करे, इसको कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। क्या है ये? एक ये नशा है, और एक नशा यह है कि मोटरसाइकिल पानी दीवानी होती है ना, उछाल रहे हैं मोटरसाइकिल, ये भी क्या? ये जवानी है। चल रहे हैं तो जनाब ऐसे, एक ऐसे ही नौजवान अकड़ कर चल जाता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया, मियां अकड़ के क्यों चलते हो? यार तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? आया कि मुझे मालूम है कि तू कौन है, मैं तेरा माजी भी जानता हूं, तेरा हाल भी जानता हूं, तेरा मुस्तकबिल भी जानता हूं। कहा अच्छा, वो कैसे? कहा तेरा माजी तो यह है कि तू बाप की मनी, मां के हैज से पैदा हुआ, पेशाब पखाने में लिथड़ा रहता था तू, ये तेरा तो माजी है। जब तू दुनिया में आया तो गलाजत और गंदगी में लिथड़ा हुआ था, और पेशाब पखाने में लथड़ा होता था, ये तेरा मासी है। तेरा हाल यह है कि इस वक्त भी तेरे पेट के अंदर पेशाब पखाना गंदी हवा भरी हुई है, तो किस बात पर करता है? अगर तेरा पेशाब बंद हो जाए, तेरी हवा बंद हो जाए, तो क्या करता है? क्या करेगा तू? तेरा मुस्तकबिल यह है कि तू लाठी लेकर चलेगा, कमर झुक के मिसले कमानी हुई, मेरे मुर्शिद का शेर है, कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, उनके बालों पे गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, ये तेरा मुस्तकबिल है। तू बुढ़ा, तेरे बाल काले सफेद हो जाएंगे, आंखों पे पौने 12 नंबर का चश्मा लगेगा, तेरे दांत हिलकर उखड़ जाएंगे, गाल पिचक जाएंगे, कमर झुक जाएगी। एक बड़े मियां जा रहे थे, कमर झुकी हुई, ठोकर लगी, गिर गए। हाय कहते उठे, हाय जवानी। फिर इधर उधर देखा, जवानी में कौन से तीर मार लिए थे? ये तेरा मुस्तकबिल है। बस वो नौजवान रोने लगा, उसने कहा वाकई तुमने मेरा पोस्टमार्टम कर दिया, तुमने मेरी हकीकत को मुझ पर जाहिर कर दिया, और यही जवानी है? अगर अल्लाह पर फिदा हो, ये जवानी के जज्बात है ना, ये कहते जज्बात ये ना मेरे, ताब हो क्या पता, मेरा जी चाहता है कि मैं हर हसीन को इस्तेमाल करूं, ये जवानी है ना। दादा जब शादी नहीं होती ना, एक अजीब बात हाफिज साहब, जब जिसकी शादी नहीं होती ना, कहता चार शादी करूंगा, सुन्नत पर अमल करूंगा, चार शादी, और बच्चे कम से कम दो क्रिकेट टीम तो होनी चाहिए, ताकि आपस में क्रिकेट तो खेल सके। एक ऐसा ही नौजवान था, वो कहता था, उसकी शादी हुई, चार पांच महीने बाद मैंने उससे पूछा, हाँ भाई कितनी शादी करनी है? कह रहे मौलाना साहब एक भी बहुत, एक को निभाना मुश्किल है जी। जो लोग कहते हैं अरे जी मौलाना साहब दूसरी शादी करना सुन्नत है, साहबों ने भी दूसरी शादी की थी, दो दो शादियां, हम भी साहबों की सुन्नत पर अमल करेंगे, तो सवाल पैदा होता है, ठीक है अगर कोई आदमी सुन्नत की नियत से करता है तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल पैदा होता है ये 35-40 साल का हो गया, सारी सुन्नत 16 साल की लड़की में नजर आती है, इसको सुन्नत की शादी है? 16 साल वाली चाहिए, 18 साल वाली चाहिए, तो सारी सुन्नत वही है। आप ससलम ने एक कुंवारी से शादी फरमाई, और वो भी बाद में बेवा तलाक याफ्ताओं पर के साथ आपने जिंदगी बसर की, आशिक रसूल है ना हम लोग, सारी सुन्नत कुंवारी में नजर आती है, ये बेवाएं कहां जाएंगी, ये तलाक याफ्ता कहां जाएंगी? अगर करनी है वाकई, अगर सुन्नत मकसद है, अगर सुन्नत मकसद है तो करे ना, जरा इनको भी तो घर बसाए। जी बात यह है, तो अगर आइए काजी साहब, आइए आइए, अरे आप भी आ गए हैं, इधर आइए जी, काजी साहब को इधर बिठाओ भाई, हमारे मुअज्जज मेहमान हैं, मुल्तान से आए हैं मुलाकात के लिए, बल्कि सुबह कुलूर कोट साथ थे काजी साहब, फिर मुल्तान गए, कुछ अपनी जिम्मेदारियां निपटाकर फिर माशाल्लाह तशरीफ लाए। मां इदरीस साहब आ गया, ये ना यार आप भी तो बेचारे कुलूर कोट लेने के लिए गए थे, कितनी कुर्बानी है देखी, 5-6 रात का सफर किया, 1:30-2 बजे पहुंचे, सुबह फिर हमारे साथ, माशाल्लाह आगे आ जाए, आगे आ जाए, बिल्कुल जगह बनाओ यार, इतनी बड़ी कुर्बानी है माशाल्लाह। मेरे पीर भाई भी हैं, लेकिन पीर भाई इनकी कुर्बानी मोहब्बत की, देखिए ना कि कोई आसान काम थोड़ी। हाजी साहब आगे आ जाए आप भी, अंदर जगह है। अर्जी कर रहा था दूसरी शादी का मजेदार मजमून, लज्जत है ना दूसरी शादी के नाम पर, तो लेकिन जिसने दूसरी शादी करनी है 16 साल की 18 साल की सुन्नत अदा करनी है। वो जैसे एक पीर था ना जाली पीर, अब वो बुढ़ियों से बुढ़ियों को साइड पे बिठाता था, जवान से पैर दबवाता था, तो किसी ने कहा एक मौली साहब ने, भाई क्या आप जवान से पैर दबाते, बुढ़ियों से क्यों नहीं दबाते? वो जी बात यह है कि बुढ़ियों के दबाने से रूहानियत नहीं पैदा होती। बुढ़ी और बेवा से शादी करने में बात यह है कि सुन्नत नहीं खड़ी होगी। चुपती हुई तो बात है लेकिन सारा मसला सारी सुन्नत 16 साल में। हमारे शेख के एक पीर भाई थे, इंतकाल फरमा गए, बड़े अल्लाह वाले जी, शादियां भी करवाते थे वो, डॉक्टर करार साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो एक कारी साहब ने उनसे कहा कि हजरत मेरी भी शादी करवा दीजिए। डॉक्टर साहब बड़े अजीब आदमी थे, पूछा कि भाई कितने साल वाली चाहिए कारी साहब? हजरत 16 साल वाली चाहिए। फरमाया अगर 16 की ना मिले तो 8-8 की दो ले लूं। मैं अर्ज कर रहा था दूसरी शादी का मुबारक मजमून कि जी सवाल पहला है, आप सल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। एक कुंवारी से कर ली ना, बेवाएं तलाक पे आफ्ता। चलो अगर कुंवारी से शौक है तो ऐसी ऐसी कुंवारियां भी बैठी हैं 35-35, 40-40 साल वाली, उनसे करें, सुन्नत ही पर अमल करना है। लेकिन ये ना सहाबा की अगर सुन्नत पर अमल करना है कि सहाबा के साथ बराबरी, तो फिर सारी सुन्नतें सिर्फ शादी में नहीं है, और भी सुन्नतें हैं। फिर सब सुन्नत पर अमल करें। सहाबा का आलम यह था, हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला ईरान तशरीफ ले गए, नवाला गिर गया, लुकमा उठाकर खाने लगे, खादिम ने कहा ये काम ना करें, लोग बुरा मानते हैं। आपने फरमाया अतरुकु सुन्नतु हबीबी लिहाउलाल हुमका, इन अहमकों की वजह से मैं अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं? हमारा आलम यह है कि हमसे प्लेट साफ नहीं की जाती कि जी लोग क्या बोलेंगे। हम आशिक रसूल हैं, हमारी तकरीरें हमारे बयानात सब सुन्नतों से भरे होते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि खानदान में शादी है और हम अपनी प्लेट साफ कर लें, लोग क्या बोलेंगे जनाब। और सारी सुन्नत शादी में है, खाने की सुन्नत, लिबास की सुन्नत, नमाज की सुन्नत, अजान इकामत की सुन्नत, कभी जिंदगी में सीखने की जहमत ही नहीं की, पूछा ही नहीं। बाल सफेद हुए जल्दी से इसको काला कर लें, जवानी अपने बुढ़ापे को छुपा लें, सारा के जी नई शादी करने का शौक है इसलिए छुपा लें। लेकिन बात यह कि जो मशीन पुरानी हो जाती है नया रंग करने से वो नई नहीं हो सकती। बालों को काला करना हराम है, गुनाह कबीरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबदल्लाहु वजहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका मुंह काला करे जो अपने बालों को काला करता है। चीजों का एहतमाम नहीं, माँ बाप के साथ क्या बर्ताव करना है कभी नहीं सीखा। आलम है, अच्छे अच्छे दीनदार हैं, लेकिन माँ बाप से ऐसा मामला करते हैं, झड़कना, गालियां तक देना, जिनके बारे में हुक्म है फला तकुल लहुमा उफ, यहां तक कि अगर उनसे तकलीफ भी हो जाए तो उफ भी मत बोलो। वला तनहरुमा, झिड़को मत, और जब बात करो वकुल लहुमा कौलन करीमा, जरा नरम गुफ्तगू करो, मेरे प्यारे अब्बा, मेरी प्यारी अम्मा। अब्बा बुढ़ा हो गया, अब्बा तुझे क्या पता जमाना कहां जा रहा है, क्या तू कैसी बातें करता है भोले पुराने दखियानों से, मां तुझे क्या खबर। माँ बाप को, माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं, कहते हाँ बेटा जवानी का जमाना था, हमारी ताकत थी, फिर की मजाल नहीं थी कि तू कुछ बोल सके। बाप रोता है तन्हाइयों में, माँ रोती है कि मेरे बच्चे को देखो क्या हो गया, जिसकी खातिर हमने 9 महीने जिसको अपने पेट में रखा। जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो रात पर सो भी नहीं सकती, करवट अपनी मर्जी से ले नहीं सकती, जब उसको करवट लेनी होती है वो उठकर बैठती है, रूह बदलती है, फिर करवट लेती है। लेकिन वही बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपनी माँ के साथ क्या सलूक करता है। अफसोस तो उन दीनदारों पर होता है कि कहने को दीनदार है लेकिन अपनी माओ के साथ क्या सलूक है। और दीनदारों का तबका हमारे यहाँ कौन कहलाता है, ये हाफिज, ये आलिम, ये कारी, ये तबलीग में वक्त लगाने वाले, ये बुजुर्गों के जी, ये कंधे पर रुमाल सजाने वाले, हाथ में तस्बियां, हर साल हज उमरा है। लेकिन आलम ये देखे माँ बाप के साथ सलूक कैसा है और बीवी के साथ सलूक कैसा है। किरदरा की कोई बाजी उठा के बाल को पकड़ा और सर दीवार पे दे मारा। जब अपनी बेटी के साथ ये होता है फिर मौलवी साहब के पास आते हैं, आंसू बह रहे हैं, मौलवी साहब दामाद बड़ा जालिम मिला है, कोई तावीज दे दो कि वो मेरी बेटी पर शफीक और मेहरबान हो जाए। कभी अपने लिए तावीज लिया कि हम कुत्ते की तरह भौंकते हैं, हम पागलों की तरह अपनी बीवियों के साथ अशर करते हैं? कभी तावीज नहीं लिया। क्यों? उसको तो अपनी मर्दानगी का हक समझा कि जी ये तो हमारी मर्दानगी का हक है, ये तो गैरत है हमारी। जब अपनी बेटी बहन के साथ होता है, खुसूसन बेटी के साथ, और वाकई ऐसे लोगों के साथ तो जरूर होता है, एक तजुर्बा देखा, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। अजमी ऐसा इनके साथ अक्सर होता है, फिर पता चलता है कि क्या आलम है। कभी नहीं सीखा ये सुन्नत, बस सारी सुन्नत दूसरी शादी से जिंदगी उसके साथ गुजारी, अब जरा माल का नशा है ना, अब उसके बाद जी दूसरी शादी कर ली। और फिर बात अभी बाकी नहीं, अभी सहाबा का मजमून बाकी है। मेरे मुर्शिद फरमाते ठीक है, अगर तुमने दूसरी शादी सहाबा के नाम पर करनी है तो फिर सहाबा जैसी कुव्वत भी लेकर आओ। सहाबा का आलम यह था कि 3-6 से 6 महीने भी नहीं गुजरते थे कि खून निकलवाना पड़ता था, वरना सर में दर्द रहता था। आज हमारा आलम ये जरा नजला बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें ताकत की गोली भी देता है कि भाई साहब आप बहुत कमजोर है, ताकत की गोली भी खाइए, खून चढ़वाना पड़ता है आजकल। और फिर उनका आलम ये था कि वो जो उनका इस्तिंजा होता था ऊंट की मेंगनी की तरह, और यह आलम यह है कि बैठते ही जो है वो आबशार बरसाने शुरू कर देते हैं, दस्त लगे में खाना नहीं छोड़ेंगे। मुर्गी, हमारा तो ईमान मुर्गी खरीद लेती, खा के आए हैं पेट भरा हुआ है, मुर्गी की टांग नजर आए छोड़ेंगे नहीं, ऐसा आलम है। भूख है, भूख नहीं है फिर भी खाएंगे, क्या क्या है मोशन लगे फिर भी नहीं छोड़ेंगे, कि कोई बात नहीं 2-4 और कर लेंगे, ऐसी लालच भरी पड़ी है, ये हमारा हाल है। और फिर बेशर्मी का अजीब एक आलम है, हम लोगों को तो आलम यह अभी तक लेटरिन में भी जाना नहीं आया, लेटरिन की सुन्नतों की खबर नहीं कि जाए बैतुल खला नंगे सर ना जाए, और जाने से पहले दुआ पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उल्टा पांव रखे, फिर वहां पर जाकर एकदम सतर ना खोल दे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खोले, छींटों से बचे। और फिर एक अदब और भी है, जो अपना माल निकाला है ना जरा उसको बहा भी दे। हम लोगों का तो आलम ऐसे जंगली लदा, इसलिए हमारे एक दोस्त कहते हैं ना कि जन्नत में कैसे पता चलेगा यहां पाकिस्तानी कौम रहती है, कहा जहां पर गिलास और लोटे जंजीरों से बंधे हुए हों वहां पाकिस्तानी कौम रहती है, कहा जन्नत में जहां पर जंजीरों से गिलास बंधे होंगे ना समझ जाना वही पाकिस्तानी है। क्या अच्छा भला लोटा रखा होगा? नहीं, अच्छा क्यों रखा हुआ है, बैठकर पहले उसको तोड़ेंगे कि अपना काम भी करता रहे, फारिग में बात कुछ किया कर, फारिग मत बैठ कुछ कर, लोटा तोड़ेंगे, नहीं पर लोटा नहीं टूटेगा तो टोटी तोड़ देंगे, ये हमारा मिजाज है कि न हम फायदा उठाएं न दूसरे फायदा उठाएं, और फिर अपना माल छोड़ देना, सारा माल उसी पे, कि अगला आते ही बस वो नाक पकड़ के कहता है यार ये कौन देखोगे, ऐसे बदतहजीबी है कि जहां इतने, वो हमारे दोस्त सुनाया करते ना, एक बुजुर्ग जो है किसी बैतुल खला के बाहर खड़े थे, तो अब वो जो है छुर नलका खोरे छुर, पता नहीं कितने तो लोटे भाए उसने, तब उसने कहा कि तू क्या जिहाद करेगा, तू तो अगवा अपने धोने में ही लगा रहेगा, अल्लाह के रास्ते में क्या जाएगा, जहां इतने लोटे भाए चलो एक इंसान है कोई वजह है, लेकिन कम से कम जरा 1-2 लोटे मजीद भाकर अपने माल को तो साइड में लगा दे, इतनी बदतहजीबी है कि बस। तो हमको तो बैतुल खला तक नहीं आया जाना। मदनी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया देखिए क्या अजीब है काबिरीन, कि ट्रेन कम में एक मिस्टर बैठा हुआ था, उसको हाजत हुई, वो लेटरिन की तरफ गया, थोड़ी देर में अजीब सी चेहरे की हैफियत वापस आगे बैठ गया। अल्लाह वालों का अजीब मिजाज होता है। हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह, हजरत समझ गए कि क्या बात है, उठ कर गए तो वहां जो लेटरिन था उसमें वही जैसे हमारी तहजीब याफ्ता कौम पढ़े लिखे हैं और ये आलम सारा माल छोड़ के इतने बड़े आलिम मस्जिद नबी में हजरत ने दर्श दिया एक जमाने तक दर्श हदीस शरीफ। इतने बड़े अल्लाह वाले इतने बड़े आलिम लेकिन हजरत लेटरिन साफ फरमाए धो दिया। उसके बाद आकर उससे फरमाया कि जाओ अब जाकर लेटरिन चले जाओ अब तुम्हारे इस्तेमाल के काबिल बन गया। अल्लाह कितना अपने को मिटाया। हम लोग किसी के लिए इस्तेमाल के लिए छोड़ते नहीं है कि अगले वाले के लिए ना पानी भी है जहां पानी ना हो तो एक समझ में आती बात लेकिन पानी भी है लेकिन उसके बावजूद ऐसी बदतहजीबी के बस। और नाम क्या है इस सुन्नत आशिक रसूल सुन्नत है सारी सुन्नत शादी में है बाकी कोई पूरी दीन में कोई सुन्नत नहीं। घर में शरई पर्दा नहीं है भाभी से पर्दा नहीं है जबकि शरीयत का मसला है भाभी से पर्दा साली से पर्दा पर्दा नहीं है बस सुन्नत पर अमल करना है। और फिर जो करते हैं पहली बीवी पाकर दूसरी को भूल जाते उसका ना खर्चा बहुत कमाल किया खर्चा दे दिया बहुत कमाल किया बाकी अदल जो मकसद तो अदल था ना खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदत तो अदल की शर्त है और यहां तो अदल है ही नहीं क्योंकि अदल का पल्ला तो सारा नई बीवी की तरफ झुकाया हुआ है। तो फिर साहबा पर बात चल रही थी अगर करनी है तो फिर साहबा की सुन्नत पर तो साहबा का आलम यह था जिहाद पर तशरीफ ले जाया करते थे अपनी बीवियों को साथ ले जाते थे रोजा रखकर दिन भर जिहाद फरमाते थे शाम को खजूर से इफ्तार करते थे और रात को अपनी बीवी से सोहबत भी करते थे। और यहां हम एक रोजा रख लें बीवी ने कहा जरा सब्जी ला दो तुम्हें पालू नहीं मेरा रोजा है आज इतनी गर्मी हो रही है मुझे चक्कर आते मेरे ब्लड प्रेशर लो हो जाते ये आलम सारा दिन घर से हिलेंगे नहीं बिस्तर पर एंटरें इफ्तार हुई इफ्तार खाते ही शुरू हुए जो बिस्मिल्लाह याद नहीं है खाना जो शुरू किया मगरिब की नमाज भी निकाल दी इतना ठूसा हलक तक ठूसा फिर उसके बाद जब नमाज पढ़ ली मगरिब की फिर मगरिब की नमाज पढ़ के तरावी तक अलग ठूसा फिर तरावी पढ़ने गए भी तरावी पढ़कर आए फिर उसके बाद फिर अलग ठूसेंगे फिर अभी से फिक्र सहरी में क्या खाना है फिर सहरी में अलग ठूसेंगे सारा दिन ठूसो खान बने में यह आलम है। और फिर अगर गलती से बीवी हाथ भी लगा दे अरे भाई बस करो यार इतनी हिम्मत नहीं है एक रोजा रखकर यह आलम है। और बर करने चले साहबा की बराबरी जरा देखना चाहिए कि कहां शहजादे और कहां भंगी क्या तब मुकाबला करता है। और अगर करना ही है तो फिर उसूल से करें तरीके से करें मना नहीं है लेकिन अपनी शहवत को सुन्नत का नाम ना दे। एक तालिबिल अब आप बताए तालिबिल में तीसरे या चौथे दर्जे में पढ़ता था मेरे यहां कुछ बयान में आना शुरू हुआ अब ये मजामीन है इश्कबाजी वगैरह से मुतालिक पेश करता हूं। हजरत साहब शादीशुदा भी हजरत साहब दूसरी शादी करनी है मैंने कहा भाई खैरियत और जी सुन्नत है खैरियत तो है जी गुजारा नहीं होता। अच्छा मैंने कहा दूसरी शादी से गुजारा नहीं होगा फिर क्या करोगे क्या जी तीसरी करूंगा तालिबिल में मदरसे की जकात की रोटियां खा रहा है उसका हाल बता रहा हूं मैं आपको तीसरी शादी करूंगा उससे गुजारा नहीं होगा फिर क्या करोगे चौथी करूंगा मैंने कहा उससे गुजारा नहीं होगा जी चार शादी की इजाजत है बस फिर क्या करोगे करोगे क्या जी सब्र करूंगा मैंने कहा तुम ये सब्र अभी क्यों नहीं कर लेते जो सब तुम चार शादी के बाद करोगे वो अभी क्यों नहीं कर लेते क्योंकि जो तुम्हारा मसला है मैंने उससे कहा जो तुम्हारा मसला है वो तो फिर भी हल नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा मसला कुव्वत नहीं है
जिसको तुम कुव्वत बोल रहे हो वो कुव्वत नहीं है। कहने जी कुव्वत है, मुझे जज्बात बहुत होते हैं। मैंने कहा भाई ये कुव्वत नहीं है, कुव्वत वाले जज्बात कुछ और होते हैं, और वो जज्बात वो होते हैं कि ना खाके भी जज्बात होते हैं। और आजकल हाल ये कि रोटी ना खाए तो दुमी नहीं हिलती, वही रोजे वाला हाल है। बगैर सहरी के एक दिन रोजा रख ले, शाम तक किसी के काबिल नहीं होगा, पहली के भी काबिल नहीं रहेगा। नहीं शहवत कुव्वत है, मुझे शहवत बहुत होती है। मैंने कहा शहवत आपको कुव्वत की वजह से नहीं होती है। मौलवी था ना, बन रहा था, और मौलवी आप आशद के बिदू ने दलील चुप न शब्द लादा, बोले जा रहा था। मैंने कहा भाई मसला कुछ और है। आखिर जब देखा सब थक गया, जी मसला क्या है? मैंने कहा मसला है, मैंने कहा सच सच बताओ, झूठ नहीं बोलना। मैंने कहा सच सच बताओ, नजर की हिफाजत करते हो? वो जी इस जमाने में तो पता है ना बहुत मुश्किल है आपको। क्या असर के बाद कहाँ जाते हो? वो जी जरा बाजार के चक्कर लगाने, के स्टॉल पर भी खड़े होते हैं। वो जी जरा खबरें देखनी होती है। मैंने खबरें देखते हो या हसीनाओं को देखते हो? वो जी नजर पड़ जाती है। मैंने कहा तुम्हारा मसला तो अपनी जगह मौजूद है, जब तुम अपनी ताकत को खुद इस तरह से बर्बाद करोगे और ऐसे मौके पर जाओगे जहां तुम्हारी शहवत भड़के, तो तुम्हारा तो इलाज 10 शादी से भी नहीं होगा भाई। तुम क्या समझते हो इस चीज को? दादा एक अदाकारा थी, उसने कहा ना जब मर्द चाहे शादी कर सकते तो औरत भी शादी कर सकती। हजरत लुधियानी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह, जवाब बड़ा पसंद आया मुझे तो। हजरत को किसी ने लिखा आपके मसाले उनका हल आता था ना जुम्मे के दिन जंग अखबार में, उसमें हजरत के जवाब आते थे, जिंदगी की बात है। तो हजरत का जवाब मुझे इतना पसंद आया कि अल्लाह अकबर। हजरत ने फरमाया, किसी ने लिखा कि हजरत एक अदाकारा ने कहा है कि जब मर्द चाहे शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? हजरत ने फरमाया कि भाई वो जिस किस्म की औरत है उसके लिए तो 10 भी ना काफी है। हजरत का ये जवाब था अखबार में छपा। वाह वाह वाह, क्या जवाब है देखिए। मैंने कहा भाई तेरा भी यही मसला है, तेरे लिए तो 10 क्या, तू तो 100 भी करेंगे तेरा मसला पूरा नहीं होगा। क्यों? जो तू बदनजरी करके जो अपनी शहवत को भड़काता है। अभी तो जवानी का जमाना है, बाद में पता चलेगा जनाब क्या होता है। अभी तो एक जोश है कि दो दो क्रिकेट टीमें लाऊंगा, चार चार शादी करूंगा, ये सब है भाई। हर चीज के कुछ उसूल हुआ करते हैं, इसलिए मेरे मुर्शिद फरमाते हैं तकवा सीखो, अल्लाह ताला की मोहब्बत सीखो, ये काम आने वाली चीज है। वरना अगर अपनी जिंदगी इन गटर लाइनों पर या दुनिया ही कमाने में लगा ली तो मरने के बाद ये कोई काम नहीं आएगा। काम क्या है? मैं अर्ज कर रहा था वो बात कि जब जो चीज मरकज के जितना करीब होती है उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है मेरे दोस्तों। लिहाजा हम लोग जितना ताल्लुक अल्लाह ताला से पैदा होगा उतना हमारी कीमत ज्यादा बढ़ेगी। और वो ताल्लुक कैसे पैदा होगा? सुन्नत पर अमल करके, क्योंकि हमारा मरकज अल्लाह ताला की जात है और हमारा महवर मेरे मुर्शिद फरमाते हैं सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना हम लोग सुन्नत पर अमल करेंगे दर हकीकत हम उतना अल्लाह ताला के करीब होते चले जाएंगे, जितना हम सुन्नत पर अमल करेंगे। लिहाजा बाज़े ऐसे लोग भी हैं कि चार शादी की सुन्नत का कोटा पूरा करके रखते हैं और एक बीवी ने जरा कुछ किया फौरन तलाक दे दी कि जी हम दीन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, और चौथा कोटा फिर पूरा कर लिया। नाम इसका रखा सुन्नत और पीछे सोच लीजिए है शहवत। इसलिए जितना हम सुन्नत पर अमल करेंगे मेरे दोस्तों उतना दर हकीकत हम अल्लाह ताला के करीब होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी। तबिया कहते हैं उस बकरी के बच्चे को कि जो मां के पीछे उछलता कूदता है वो चलता है बकरी के पीछे, ज्यादा बच्चा इधर उधर हो जाता ना, बकरी मुड़ के देखती, जैसे देखती बच्चा कैसा कूदता हुआ आता है, उसी बच्चे को तबिया बोलते हैं। तो फतबियों ने फरमाया कि जिस तरह से वो बच्चा समझता नहीं है, सिर्फ माँ का इशारा देखता है, तो आ ए आशी के रसूल, तुझे भी ऐसा होना चाहिए कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा क्या है कि दाढ़ी रखनी है, अपने लिबास को कैसा बनाना है, शलवार टखनों से ऊपर रखनी है, अपनी निगाह को नीचे करना है, अपनी अखलाकी बुलंदी को कायम करने के लिए अपने दिल को तोड़ देना है लेकिन जबान नहीं खोलनी, ऐसा तबिया होना। फक्त इत्तबा ऐसी होती है भाई कि इत्तबा क्या है, समझ में आए या ना आए, सुन्नत पर अमल करना है। इत्तबा तो इसको कहते हैं जो बात समझ में आ गई, अमल किया, क्या कमाल पैदा किया उसने। इश्क तो नाम ही इसका है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन काम महबूब को राजी कर रहा है। आ क्या इश्क है, मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आशिकम मन बरपने दीवानगी, कि मैं तो दीवानगी के फन पर आशिक हूँ, सहरा मद फरहंगो फरदानगी, मैं तो अकल परस्ती से बाज आया, वो अकल जो पेशाब पखाने की गटर लाइन हो और दुनिया के आर्दी नफे को देखती हो, उस अकल से मैं बाज आया। और फरमाते हैं कि आजमूदम अकल दूर अंदेशा, अकल के जरिए से अल्लाह को पाने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अल्लाह ताला के कुर्ब से महरूम रहा, बाद अजी दीवाना साजम खेसा, उसके बाद मैं दीवाना बन गया, बस अल्लाह ताला को मैंने पा लिया। लिहाजा साहबा की मोहब्बत को देखिए कैसा कि क्या कि फरमाते कि साहबा का आलम यह था, ताबईन फरमाते कि अगर हम उनको देखते तो उनको दीवाना समझते और अगर साहबा हमको देखते तो हमको मुनाफिक कहते। साहबा ने ऐसे दीवानों की तरह आपकी अमल की तरीके पर अमल किया और हम यह पहले देखते हैं। एक सुन्नत पर अमल करने से पहले शादी अगर सुन्नत के मुताबिक करेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, ओहो जी लोग क्या कहेंगे, बिरादरी क्या बोलेगी, मदरसे पढ़ा, मदरसा खोला, दीन के काम है, लेकिन अजीब बात यह है कि अपनी बिरादरी में आकर वही रंग में रंग जाते हैं। सारा मदरसे के पढ़ना भूल गया, सारा तबलीग में सीखना भूल गया, सारा बुजुर्गों की सोबत से जिस सीखा वो सब भूल गया, क्योंकि रंग चढ़ा ही नहीं ना, लिहाजा खानदान में आकर खानदान वाले बन गए कि जी टीवी भी चल रहा है तो उसके सामने भी बैठ गए, अच्छा ये कौन सा प्रोग्राम है, और देखो तो माशाल्लाह ये वो है जो दीनदार कहलाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरत इसकी है कि ताल्लुक माल्ला हासिल किया जाए और उसमें तरक्की कैसे सुन्नत पर अमल करने से होती है, लगा उसके लिए किसी शेख का इंतखाब करें, किसी अल्लाह वाले को अपने सर पर मुकर्रर करें, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं है लगाई जाती है। नमाज से पहले जनाब से बात हो रही थी, मुतवल्ली मोहतमिम साहब से बात हो रही थी कि देखे सूरज की शुआएं जिस जमीन पर नहीं पड़ती वहां गल्ला नहीं उगता, लिहाजा अगर किसी खेती में दरख्त का साया हो तो जिस जगह दरख्त का साया होता है वहां गल्ला नहीं उगता। और एक बात, अभी मेरा सफर हुआ था चित्राल का, तो जून का महीना था, देखा वहां गंदम की फसल कट रही, बड़ा हैरान हुआ, या अल्लाह जून के जमाने में गंदम की फसल, बताइए जून का आखिर चल रहा था। तब अल्लाह ताला ने अजीब बात दिल में डाली मेरे शेख की बरकत से, सिंध में सबसे पहले गंदम की फसल की इब्तदा सिंध से होती है और जैसा जैसे ये शुमाल की तरफ बढ़ते जाते वैसे वैसे ताखीर होती चली जाती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वहां गर्मी जल्दी शुरू हो जाती है, तो जहां गर्मी जल्दी शुरू होती है वहां गंदम की फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पता ही चला कि सोहबत अल्लाह वालों की सोहबत की गर्मी वो बंदे के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत की खेती को जल्दी तैयार करती है। वरना आलम यह है नमाज पढ़ के हम गुनाहों में मुबतला है, दीन का काम करके हम गुनाहों में मुबतला है, दाढ़ियां तबलीग बुजुर्गों की सोहबत मदरसा खोल के भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपनी बीवी से ये कह सके कि तू शरई पर्दा कर, इतनी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। सारे जमाने को ललकार रहे हैं, हुक्मरानों की पतलूने उतारने को तैयार, उनको चैलेंज कर रहे हैं लेकिन बीवी को मजाल नहीं है कि कह सके तू शरई पर्दा कर। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मैं खुद शरई पर्दा नहीं करता, जब मैं शरई नहीं पर्दा नहीं करता मैं अपनी बीवी को कह सकता हूं कि शरई पर्दा कर तू? मैं सारे मोहल्ले भर की औरतों को देख रहा हूं, मैं सारे भर मोहल्ले खानदान भर की नामहरम रिश्तेदारियों को देख रहा हूं और उनसे गपशप चल रही है, बीवी से बात करेगा तो फोन पे भी बात करेगा, पता चलेगा बीवी से बात कर रहा है। हाँ बोलो क्या बात है, क्या भाई टाइम नहीं है जल्दी बोलो क्या है, हाँ अच्छा अच्छा आ गया ना, क्या मुसीबत है। उसी वक्त रिश्तेदारनी का फोन हो जाए, आप कैसी हैं, ठीक अच्छा हाँ, मैं जरूर हूँ, खाम खाम हंसेंगे, मोबाइल कंपनी से फोन हो जाए, सर आपका बैलेंस खत्म हो गया। जी आप बेफिक्र, मैं अभी जमा करा देता हूँ। कहाँ जमा कराओ?
आप देखिए पता चलता है कि जालिम किसी हसीना से बात कर रहा है, गुफ्तगू के अंदाज से पता चलता है। इसके साथ में ऐसी से भी कर मुस्कुराहट होगी, नामहरम से बात करने का यह असर है, और अपनी बीवी जी से बात करने में अजर भी है। और हम और अजीब है, मोहल्ले वालों से बात करेंगे मुस्कुराकर, मस्जिद की नमाजियों से मुस्कुराकर, और अपने दोस्तों में मुस्कुरा जी बड़े अखलाक वाले हैं, और घर जाके क्या हाल होता है? ऐसे माथे पर तेवड़ियां चढ़ी हैं, जबकि सुन्नत है कि आप सल्लम के लिए हजा हमारी माँ फरमाती है कि घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। अल्लाह, गम थे उनको भी, आपको भी गम थे, अभी हथियार उतर नहीं पाते थे कि दूसरे गजबे में तशरीफ ले जा रहे हैं। साहबा के गम, उम्मत का गम लगा हुआ है, लेकिन सुन्नत ये कि घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। जरा हम अपने दिल पे हाथ रखें, हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम में से कितने लोग इस सुन्नत पर अमल करते हैं। और वजह यही, अगर सुन्नत के मुताबिक घर में ऐसे मुस्कुराते दाखिल होंगी, बीवी बोलेगी खैरियत तो है, क्या दिमाग ठीक है तेरा? ये आलम है। बीवी बोलेगी खैरियत है, क्या दिमाग खराब है, हफ्ता आ रहा है। बात यह कि सुन्नत तो सुन्नत है, वो किसी के कहने या उसने से बदली नहीं जा सकती। माँ बाप से बात करने का, माँ बाप से बात करेंगे तो ऐसे नहीं, मुस्कुराहट नहीं होगी चेहरे पर। फजीलत तो खूब याद कर ली है कि जी मोहब्बत से अपने माँ बाप को देखना हज मकबूल का सवाब मिलता है, लेकिन फजीलत को हासिल कौन करे, कैसे करे भाई? इसलिए मेरे मुर्शिद फरमाते जरूरत है तकवा सीखो, हाँ, वरना इबादतों के साथ भी इन गलासत और गंदगी में मुबतला होंगे, क्या आलम होगा। फरमाया अल्लाह ताला ने अपनी दोस्ती और विलायत इबादतों पर नहीं रखी है, बल्कि गुनाह छोड़ने पर। क्यों, कैसे? इन औलियाहू इल्लल मुत्तकून, हमारा कोई वली नहीं, नाफिया है, नफी है इसके अंदर, इल्ला लेकिन वो लोग जो तकवा से रहते हैं। और तकवा नाम ही है गुनाह छोड़ने का, तकवा इसका नाम ही है। जी बड़े मुत्तकी, क्या मुत्तकी? जी तहज्जुद गुजार है, ये बड़ी बड़ी पगड़ी है, और जी दाढ़ी देखो कितनी बड़ी है, शलवार जो है घुटनों तक चढ़ाई हुई है। हकीम उल उम्मत तो फरमाया करते थे ऐसी बुजुर्गी तो बहुत आसान है, ये बुजुर्गी तो मुश्किल नहीं है। एक चिल्ला लगाया, मदरसे में दाखिल लिया, कंधे पे रुमाल आ गया, हाथ में तस्बीह आ गई, माथे पर से लेकर नाक तक सजदे का निशान खींच गया रगड़ रगड़ के, और शलवार घुटनों तक चढ़ा ली, बुजुर्ग बन गया। बस मुंह फुला के बैठे हैं, मुस्कुराने नहीं, बुजुर्ग बन गया भाई। ये बुजुर्गी, इसका नाम अगर बुजुर्गी है तो ये मेरे पास मिलने की नहीं है। फिर मैं ऐसे बुजुर्ग तो बहुत मिल जाएंगे, अगर कमाल ही चाहते हो, आप कमाल ही चाहते हो बंदगी का, इंसान बनो इंसान। फरमाया करते थे इंसान बनो, फरमाया मेरे यहां बुजुर्ग बनना नहीं, मैं बुजुर्ग नहीं बनाता, मैं इंसान बनाता हूं। और इंसानियत क्या चीज है? कहते इंसानियत यह है कि हर लम्हा साथ अपने मालिक की रिदा और खुशी की फिक्र करो, कि मेरी जात तक किसी को अजियत ना हो। मैं दूसरों के लिए होना तो ये चाहिए कि दूसरों के लिए राहत का जरिया बने। मैं ये कहा करता हूँ, मैं अपनी बात कर मैं बताता हूँ, मैं ये कहा करता हूँ भाई, अच्छा तुम दूसरों को राहत नहीं पहुंचा सकते तो चलो दूसरों को तकलीफ मत दो, कम से कम इतना तो बनो, होना तो ये चाहिए था राहत का जरिया। अच्छा भाई चलो ये नहीं तो तकलीफ तो मत दो। आलम यह है कि हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले, हमारे मोहल्ले वाले, ऐसा आलम हर वक्त तस्बीह है, माथे पर सजदे का निशान, लेकिन जरा कोई मोहल्ले वाला कुछ कह दे, कोई बात हो जाए, फिर देखो जनाब की मुंह से कैसे फूल झड़ते हैं। तेरी माँ, तेरी बहन, क्या फिर पता चलेगा? माशाल्लाह, कहे दीनदार ऐसा नहीं भाई, ऐसा दीनदार हमने नहीं बना। साबा का आलम यह था, दीन की तबलीग नहीं, नाम नहीं, सिर्फ तिजारत देखकर मुसलमान हो गए। क्या मामला थे, उसूल थे, सिर्फ नमाज तक के दीन महदूद नहीं है भाई, कि लंबी लंबी नमाजें तो रगड़ ली, अब उसके बाद जाकर जो है गालियां बको, झूठ बोलो, माँ बाप के साथ बदतमीजी, बीवी की पिटाई, टीवी और गंदे अखलाक, ये सिर्फ नहीं, नमाज मुबारक है, पढ़नी चाहिए एहतमाम से, सुन्नतों का एहतमाम करके, लेकिन उसके बाद की जो जिंदगी है, मेरे दोस्तों हम यतीम नहीं है। हमें एक एक सुन्नत लेटरिन का तरीका तक सिखाया हमें, अल्लाह अकबर। आज तकरीरें हैं, जोश है, जलसे हो, नारे लगाने को तैयार है, जरा कोई गुस्ताखी कर दे तो हम पेट्रोल पंपों को आग लगा देते हैं, क्यों? इश्क रसूल है जनाब, बिजली चोरी करके इश्क रसूल का जलसा करते हैं, और फजर की नमाज गाई, क्यों? इश्क रसूल का जलसा किया,
ذرا کچھ نوٹ بھی جمع کر لیے جیب میں آ گیا فجر کی نماز غائب کیونکہ اب تو جنت میں جنت جانا پکی کیونکہ نبی کی شفاعت ملے گی کیونکہ شفاعت کے نام پر خوب جھومے تھے ایسے شفاعت تو نہیں ملتی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بھی داڑھی نہیں ہے مونچھیں بڑی بڑی ہیں سب عشق رسول کے نعروں سے جنت مل جائے گی صحابہ نے نعرے نہیں لگائے عمل کر کے دکھایا تو میرے پیارے دوستوں چاہے نعرے زبان خاموش رہے لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق سیکھے اس کے لیے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے ابھی نماز سے پہلے بارت انہیں دی نجات معلومات پر نہیں ہوگی معمولات پر ہوتی ہے معلومات علم سے یقین جانے ایسے ایسے یہودی ہیں ایسے ایسے یہودی ہیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء کے ٹکر پر ہیں ان کے علم کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ ہے بعضوں کو علم ایسے ایسے یہودی ہیں قرآن پاک کی وہ تفاسیر زبانی یاد ہے ان کو احادیث مبارکہ زبانی یاد ہے کر پڑے ان سے زیادہ لیکن اگر علم پر ہی نجات ہوتی علم پر راستہ تو اسی سے ملے گا لیکن اصل نجات عمل پر ہے میرے دوست سب علم کافی نہیں ہے کہ ہم تقریر کر لیں اور بائی چھٹی کہ پتہ چلا دین کا کام دین کے نام پر کام کر رہے ہیں فجر کی نماز میں غائب یہ تو ہمارے دین کا عالم ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنا قرب اور تعلق عطا فرمائے میرے دوستو ہمارا جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے جتنا ہم سنتوں پر عمل کریں گے ایک ایک سنت پوچھتا جائے سیکھتا جائے عمل کرتا جائے ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے سو شہید کا ثواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتی فقط احبنی جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا قرب تعلق نصیب فرمائے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے واخر دعوانا الحمد للہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے کریم مالک ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما دیجیے ہماری گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور اپنی معرفت سے مالا مال فرما دیجیے یا اللہ غیر اللہ کی گندگیوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما اپنا قلب اپنی محبت اور معرفت اور یا اللہ عبادت کا نور عطا فرما یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اے کریم مالک ہماری جانوں کو اپنے قرب کی وہ لذت عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درامد نہ کرے یا اللہ ہم سب کو 100% شریعت اور سنت پہ چلنے والا بنا دیجیے اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما علماء ربانی جین کی محبت عطا فرما اللہ والوں کی محبت عطا فرما اور اللہ والوں سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما نیک اعمال کی محبت عطا فرما اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما حلال روزگار عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما اور یا اللہ اس حلال مال کو آپ کی رضا اور خوشی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ نافرمانی اور یا اللہ حرام رسومات میں یا اللہ ہمارے مال کو خرچ ہونے سے بچا لیجیے بیماروں کو شفا عطا فرما اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہے ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار اللہ والا بنا دیجیے اے کریم مالک ہماری دینی کوششوں کو قبول فرما جو بھی دین کی خدمت کے شرف آپ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا یا اللہ اس کو قبول فرما ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے یا اللہ پڑھنے والے پڑھانے والے دین کے جس شعبے میں کام کرنے والے معاون ہیں یا اللہ اور جان مال آبرو سے مدد کر رہے ہیں یا اللہ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرما دیجیے یا اللہ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما دیجیے یا اللہ اپنے کرم سے اس میں بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے اور معرفت کا اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم تقبل هذه الدعوات بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون اسعدنا في الدارين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء وصل وسلم على نبيك وحبيبك.